तो हम चलते हैं अगली टिप पे, क्योंकि टिप्स बहुत सारी हैं और दिल तो चाहता है कि बीच बीच में ले लेके रोक रोक के बात करें, लेकिन यह है कि फिर ऐसा ना हो कि जो कमिट आपसे किया है वो पूरा ना हो सके। तो अगली टिप है मुस्तरिब होना छोड़ दें। जी, कुछ लोगों को बड़ा ही शौक होता है परेशान रहने का, इस तरह आप दुखी परेशान, और बस लोग इसको बड़ी नेकी समझते हैं, फलां वो तो कभी मुस्कुराए ही नहीं, फलां को देखे वो तो कभी हंसा ही नहीं। तो आइए ज़रा सी इस पे भी टिप्स लेकर देखते हैं कि इसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने आपको मुझे क्या सिखाया। आप घबराएं नहीं, क्या आपके रब का फरमान है, अलम नशरह लक सदरक, सूरह शर्क आयत नंबर 1, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया। ये शरह सदर हर उस शख्स को हासिल होगा जो हक का हामिल हो, हिदायत के रास्ते का राही हो और नूर का मतलाशी हो। क्या कहने हैं इस शख्स के जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है और वह अपने रब की तरफ से रोशनी में हो। बस बर्बादी है इनके लिए जिनके दिल सख्त हैं और अल्लाह को याद नहीं करते। मतलब यह है कि हक से शरह सदर होता है और बातिल सीने को तंग कर देता है, और जिस शख्स को अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। यानी ये दीन ऐसी गायत है जिस तक वही पहुंच सकता है जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे। ना घबराएं, अल्लाह हमारे साथ है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये कलमा हर शख्स को याद रहता है जो अल्लाह के फजल व करम, नुसरत और मदद पर यकीन रखता है। वो लोग जिनसे कुछ लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे खिलाफ लाओ लश्कर जमा कर रखे हैं, इनसे डरो, तो इस धमकी से इनके ईमान में इजाफा ही हुआ। वो बोल उठे, अल्लाह हमें काफ़ी है, वो बहुत ही अच्छा कारसाज है। ये हैं वो लोग जो हमर उल असद के मौके पे रोक दिए जाने चाहे लेकिन वो नहीं रुके, क्योंकि उनको पता था कि दुश्मन हमारा बाल कभी का नहीं कर सकता जब तक अल्लाह हमारे साथ हो। इसकी मदद और नुसरत और सरपरस्ती आपकी हिफाजत करेगी। तो नज़रें अल्लाह पे लगाइए, ऐ नबी आपको और इन मोमिनों को जो आपकी पैरवी कर रहे हैं अल्लाह काफ़ी है। जो लोग भी इस रास्ते पर चलते हैं वो कामयाबी पाते हैं। इस हय्युन कय्यूम पर तवक्कुल करो जिसे कभी मौत नहीं आएगी। इसके सिवा जो भी है वो मरने वाला है, जवाल पजीर है, इसकी इज्जत आनी जानी है, हमेशा वाली नहीं। सब्र करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, इनके ऊपर गम न करें और इनकी यानी कुफार की चालबाजियों से तंगी में ना पड़ें। अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करने वालों के साथ है और इनके साथ जो नेकी पर चलते हैं ये अल्लाह की माईयत खासा है, यानी अल्लाह ताला का ख़ास साथ जो कुछ लोगों को नसीब है। कौन? जो इसके दोस्तों को मिलती है। जैसा इनका तकवा और जिहाद होता है इसी के मुताबिक ताईद और नुसरत और मदद इनको मिलती है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, कमज़ोर ना पड़ो और गम ना करो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। अपने रुतबे और अपनी अबूदियत में ऐसों ही को रिफ़त मिली, ये तुम्हें बस थोड़ी सी अजियत पहुँचा सकेंगे, और अगर ये तुमसे जंग करें तो पीठ फेर कर भाग जाएं, इनको कोई मदद न मिले। अल्लाह ने ये लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल गलबा पाएंगे, अल्लाह कवी और इज्जत वाला है। हम यकीनन अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की मदद करेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस अहद की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, ये वो वादा है जो झूठा नहीं हो सकता। रुफ़व्विज़ अम्री इलल्लाह, सूरत मोमिन में मर्द मोमिन क्या कहता है, मैं अपना मामला अल्लाह के सपुर्द करता हूँ, अल्लाह अपने बंदों को देखता है, अल्लाह ने इसे जालिमों के मकर से बचा लिया, अल्लाह ही पर अहले ईमान तवक्कुल करते हैं। अब देखिए ये सिर्फ कुरान की आयतों के वो छोटे छोटे हिस्से हैं जिसमें ये मौजू चलता है। अगर हमें इस तरह कुरान आता हो कि हमारा आयत के उस टुकड़े को समझ जाए तो आधे गम तो हमारे वहीं ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ तर्जमे पर गौर व फिक्र करने से। फिर इसी तरह से ज़िंदगी में याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप अपने वक्त को कॉन्क्रीट लेवल पे यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला की मदद आपके साथ भी होगी। गम न करने की तरकीब ये है, यानी अब आप एक टिप लीजिए, आप ये सोचें कि एक ही दिन तो रहना है, फिर इसके लिए कैसा गम, कैसा तड़कना, कैसा भड़कना। सच है ना? और अरबी का एक मुहावरा है जो कहावत के तौर पे वो लोग बोलते हैं, कहते हैं कि दुनिया यौमन वलना फीहा सौमन, ये दुनिया एक दिन की है और हमारा इस दिन में रोज़ा है। किस चीज़ से रोज़ा रखना है? हराम से रोज़ा रखिए, कसरत से रोज़ा रखिए, 4 दिन की बात नहीं है, ये एक ही दिन की बात है। हदीस में आता है, जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार ना करो, जब शाम करो तो सुबह की उम्मीद में ना रहो। मतलब ये है कि आज के दिन को आखिरी दिन समझ कर रहें, ना माजी को याद करें ना मुस्तकबिल की फिक्र। जैसा कि शायर कहता है, जो गुजरा सो गुजर गया, जिसकी उम्मीद है वो गैब की चीज़ है। आपका हकीकी वक्त तो बस वही है जिसमें अब आप हैं। जी टुडे अलान, माजी से हद दर्जा वाबस्तगी, इसकी याद, जो मसायब और तलखियाँ गुजर गईं, जो हादसा पेश आ चुके, इनको सोच सोच कर कुटते रहना तो हमाकत और जुनून की एक किस्म है। एक चीनी मिसल है, जिस पुल तक कभी पहुंचे नहीं हो, इसे पार न करो। जब आएगा देखी जाएगी, पहले घबरा रहे हैं, बड़ा पतला है, बड़ा टूटा हुआ है, ये है वो है, दिस एंड दैट। तो मतलब क्या है? मतलब ये कि आने वाले हादसा की सोच ना करो। हौलता ही रहता है इंसान मुस्तकबिल के अंदेशों में, इसके तफक्कुरात और गमों के चक्कर में ना पड़ो, जब तक कि आप इनसे दो चार ना हो जाओ। सलफ में किसी का कॉल है कि तुम्हारे पास तो 3 ही दिन हैं, कल जो गुजर चुका यानी यस्टरडे, कल जो आने वाला है यानी टुमारो, और आज टुडे, जिसमें तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। देखिए इंग्लिश में टुडे को प्रेजेंट भी कहते हैं ना, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट तो गिफ्ट होता है, तो टुडे इज़ अ गिफ्ट, दिस इज़ अ प्रेजेंट वी कैन प्रेजेंट टू आवर सेल्फ। इसकी ज़िंदगी क्या जो माजी हाल मुस्तकबिल के तफक्कुरात उठाते फिरता है? माजी में जीने वाला खुश कैसे रह सकता है? इसको तो बार बार इसकी यादें सताती रहेंगी, इसका ये गम व फिक्र को फ़ायदा ना देगा। ऊपर गुजरी हुई हदीस का मफहूम यह है कि तुम्हारी उम्मीद कम होनी चाहिए, बस मौत को याद करो और नेक अमल करो। जिस दिन से दो चार हो, इस दिन के अलावा सोचो ही मत। अपने आमाल, अपनी सरगर्मियाँ और प्रोग्राम उसके लिए बनाओ, अपने अखलाक को दुरुस्त करो, सेहत पर तवज्जो दो और दूसरों के साथ अपने मामलात की इसलाह करो। अल्लाह अकबर, तो क्या सीखा हमने कि मुस्तरब रहना छोड़ दीजिए। आज के बाद दुखी ना रहें, बोरिंग लगते हैं वो लोग जो दुखी रहते हैं, लोग घबराने लगते हैं आपसे। देखिए आपके अपने बच्चे आपसे खुश नहीं होंगे अगर आप घर को हॉस्टल बना दें, हर वक्त माथे पे तेवरी, और बच्चे कहेंगे मामा आप हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हैं, मामा आप इतनी बोर क्यों हैं। चाहे आपके लिए बच्चे के दिल में प्यार क्यों ना हो, इसी तरह आप देखिए बीवी शौहर एक ही रंग रूप, एक ही तौर तरीका, सब्जी ला दो, खाना ला दो, कपड़े दे दो, खाना नहीं पकाया। क्या हमारे कल्चर में हस्बैंड वाइफ कुछ इसी किस्म की जिंदगियां नहीं बसर कर रहे? बोरिंग, कोई डाइवर्सिटी नहीं, कोई चेंज नहीं है, ना हालात बदलते हैं ना कुछ, वही जगह बैठने की जहां बैठते हैं। तो जिंदगी को बोरियत से निकालिए, उस उस्ताद से शागिर्द घबराने लगेंगे, एक ही स्टाइल, एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं, हमेशा उनको आपने एक ही टोन में देखा, नहीं आप कभी एक चीज़ को उस तरह पढ़ाइए, दूसरी इस तरह पढ़ाइए, कहीं आप दिल में उतरने की बातें करें, कहीं आप प्रेजेंटेशन स्टाइल दिखाएं, कहीं दिल में उतरने की बात, कहीं बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सेशन रखिए, कहीं आप डायलॉग का स्टाइल रखिए, तो वो टीचर बहुत पॉपुलर और बहुत कामयाब होते हैं जो डाइवर्सिटी के साथ पढ़ाते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें जो हमने देखा कि अलम नशरह लक सदरक, अल्लाह ने नबी को ये जुमला क्यों बोला, इसमें शरे सदर से क्या मुराद है? तो हक की तलब थी नबी के दिल में, हक की तलाश थी उनके अंदर, क्योंकि बिगड़े हुए माहौल में पैदा किए गए। अल्लाह ने हक का रास्ता दिखाया और हक की पहचान कर दी। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपका शरे सदर हो चुका है? जिसका शरे सदर हो जाता है ना, उसकी ज़िंदगी से इज़्तिराब निकल जाता है। और अल्लाह ताला सूरत नहल आयत 127-28 में फरमाते हैं, वसबिर वमा सब्रुक इल्ला बिल्ला, और सब्र ही कीजिए और आपका सब्र भी अल्लाह ही की मदद से है। वला तहज़न अलैहिम, और इनके बारे में गम ना कीजिए, और जो ये बदअंदेशी करते हैं इससे तंग दिल ना हो। कुछ शक नहीं कि जो परहेजगार है और जो नेक है, अल्लाह ताला इनका मददगार है। तो क्या सीखा? इस्तराब से बचने का नुस्खा, कैसे इस्तराब से बचें? नंबर एक, अल्लाह पर भरोसा कीजिए, तकलीफ पर सब्र कीजिए, तकवा वालों के साथ रहिए, गमों हुजन से बचिए और नेकी पर इस्तकामत रखिए। सलफ में किसी का कॉल है, तुम्हारे पास 3 ही दिन होते हैं, कल जो गुजर चुका, कल जो आने वाला है, आज जिसे तुम बेहतर बना सकते हो। तो आप कहेंगे हमारे तो शाम होने लगी है, कोई बात नहीं, यहाँ से लेके कल शाम तक के प्लान को ले लीजिए। तो क्या पता चला इन सारी बातों से? सोचिए, अभी एक छोटा सा गैप लेते हैं ना, वक्फा है हमारे लिए, और वक्फे में हमने क्या सीखना है, जो कुछ सीखा पड़ा है ज़रा से उसको हज़म करते हैं। मसलन गम ना करें क्योंकि तकदीर लिखी जा चुकी है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। कलम लिख चुका, सहीफे समेट लिए गए, हर मामला तयशुदा है। इसलिए आपके गम और रंज से ना कोई चीज़ मुकद्दम हो सकती है ना मौखर, यानी ना वक्त से पहले आएगी ना वक्त के बाद टलेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा। क्या गम करके अब ज़माने की रफ्तार रोकना और सूरज को कैद करना और घड़ी की सुइयों को पीछे करना, उल्टे पाँव फिरना, नहर को सर चश्मे की तरफ पलटाना चाहते हैं? यानी ये इम्पॉसिबल जॉब्स हैं अगर आपने करनी है तो। यू विल नॉट गेट दिस टास्क टू बी डन। गम ना करें क्योंकि गम एक बादे समूम है। समूम कहते हैं जहर को, वो हवा जो मुसामों में घुस जाए, लू जिसको कहते हैं। तो याद रखे, गमों की लू ना जिंदगी में चलने दें जिससे फिजा खराब होती है, पानी सड़ जाता है, आसमान में बू फैल जाती है और सरसब्ज बाग सूख जाते और खिले फूल टूट जाते हैं। गम ना करें क्योंकि गमगीन आदमी इस बेकार नहर की मानिंद है, जो समंदर से निकलती और फिर समंदर में गिर जाती है, जैसे वो बूढ़ी औरत जो सूत कात कात कर टुकड़े टुकड़े कर दे, सूरज नाहल के एंड पे मिसाल, या जैसे कोई ऐसे थैले में हवा भर रहा हो जिसमें सुराख हो, या जैसे कोई उंगली से पानी पर लिखे। कहते हैं ना कि तुम्हारे बैग में सुराख तो नहीं है, हम नेकियां करते कराते हैं लेकिन वो सुराख जो हैं वो होते हैं जिसकी वजह से हमारी नेकियां गिर जाती हैं। बस हम नमाजें पढ़ते हैं लेकिन गीबत करते हैं, तो गीबतों की सुराख से हमारी नेकियां जो हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि ये कराए पे पानी डाल देती हैं, हम बिल्कुल अपने आप को इन चीज़ों से मुबर्रा कर ही नहीं पाते। तो फिर क्या करना है आपने, मैंने गम नहीं करना, आजमाना नहीं। आप गम ना करें क्योंकि आपकी हकीकी उम्र वही है जिसमें रूह खुश हो और दिल को सुकून मिले। इसीलिए अपने अय्याम में रंजो अलम में और अपनी रातें तफक्कुरात के साए में बसर ना करें, अपनी उम्र ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। तो जितना ज़्यादा इस चीज़ पे गौर करेंगे सीना खुलेगा। तो कभी कभी ज़िंदगी में एक वक्फ़ा लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि ज़रा रुकेंगे दम लेकर, एक दिन कुछ ना पकाएं। आप कहेंगे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा दिन है ना। वो किसी ने कहा कि शादी से पहले तो खुशी होती है, ये जुमला सुनकर, आई लव यू। हमारी फिल्मों ने तो यही दिखाया कि रोमांस बिफोर मैरिज, और वो कहते हैं ना कि देर इज़ नो लाइफ आफ्टर डेथ, इसी तरह लोग कहते हैं देर इज़ नो हैप्पीनेस आफ्टर शादी, शादी के बाद तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन शादी से पहले आई लव यू, तीन लव्स, और शादी के बाद बीवी को किस पे खुशी होती है? विल ईट आउटसाइड, आज हम घर से बाहर खाना खाएंगे तो खुशी होती है। लेकिन आप देखते हैं कि कभी कभी इस तरह का रिलैक्सेशन बंदे को रीअसेस कर देता है। तो रीअसेस चाहिए आपको मुझे ज़िंदगी में, जिमुत तोड़िए, बोर ना हो। आप अपने अपने माहौल के मुताबिक खुद को लिखें और एक सवाल खुद से करें, बड़ी मुश्किल है इससे इसका जवाब, क्या मैं बोरिंग हूँ? आज पूछिए तो सही ज़रा अपने घर वालों से, पर पहले को गोली खा लीजिएगा दिल की मजबूती की। बेटा मैं कैसी मॉम हूँ? बच्चों से पूछिए मैं बोरिंग मॉम हूँ कि बहुत फनी मॉम हूँ? हस्बैंड से पूछिए कि मैं एक बोरिंग वाइफ हूँ कि वट वट? अपने स्टूडेंट से भी पूछा करें कि मेरी क्लास में आप नींद तो नहीं पूरी कर लेते हैं? वो एक आंटी जी थी तो वो कहती कि जी नींद नहीं आती, सारी रात जागती रहती। मैं कह अम्मा जी स्कूल आ जाओ, इतने बड़ी अच्छी नींद आती सबनों, तुसी पढ़न ना आया करो, तुसी सोन आया करो, असी पीछे सोफे भी ला देते थोड़े लिए। तो कुछ बेचारे ऐसे हैं जो इस वक्त भी सो रहे होंगे मेरी क्लास में भी। हम तो यही चाहते हैं ना कि अब हमें कोई ना बुलाए, हमने तो म्यूट कर दिया, अब हमें कौन देखे, बस हम मौजूद हैं इधर, दैट्स इट। तो हर मामला तयशुदा है। दोहराइए खुद से ये जुमले, आपके रंजो गम से कुछ नहीं बदलेगा और आपकी हकीकी उम्र वही है जो आपको खुश और पुरसकून गुजार दे। यानी जिसमें आप खुश हैं ना वो ज़िंदगी है, बाकी तो बेकार है। गमज़दा होकर अपनी उम्र ज़ाया ना करें, माजी और मुस्तकबिल से बेफिक्र होकर हाल में जिए और अपने अखलाक और मामलात की इस्लाह कीजिए। बस फिर आप दोबारा काम करने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह।